कुंज बिहारी परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रोसेस फाउंडर आचार्य शिव दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 45 निकाल लिया सबने बोलिए। अदृष्ट पूर्वम रसितोस्मि दृष्ट्वा बोलिए। अदृष्ट पूर्वम रसितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवे स जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम् रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्राव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवे स जगन्निवास। शब्दार्थ बोलिए। अदृष्ट पूर्वम पहले कभी ना देखा गया हृषितः हर्षित अस्मि हूँ दृष्ट्वा देखकर भयेन भय के कारण च भी प्रव्यथितं विचलित भयभीत मनः मन मे मेरा तत् वह एवं निश्चय ही मे मुझको दर्शय दिखलाइए देव हे प्रभु रूपम रूप प्रसीद प्रसन्न होइए देव ईश ईशों के ईश जगत निवास हे जगत के आश्रय। मेरे पीछे बोली अनुवाद। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगन्निवास अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं, अदृष्ट पूर्वम ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा, अदृष्ट पूर्वम ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा, मैं जो पहले नहीं देखा था उसको देख करके हर्षित हो रहा हूं। क्या? कृष्ण का विश्वरूप। कृष्ण का विश्वरूप अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था, है ना। और भगवान भी कहते हैं कि तुम्हारे अलावा और मैंने पहले किसी को ये रूप नहीं दिखलाया, है ना। तो अर्जुन बहुत भाग्यशाली हैं, है? और भगवान ने कहा कि आगे भी कोई नहीं देख सकता है। वेदों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, किसी भी उपाय से कोई नहीं देख सकता आगे भी, है ना। तो अर्जुन को भगवान ने ठप्पा लगा दिया कि तुम्हारे जैसा भाग्यशाली ना कोई हुआ ना कोई होगा जिसको मैंने ये रूप दिखलाया, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं बहुत हर्षित हो रहा हूं, आपका ऐसा रूप देख करके जो पहले कभी नहीं देखा। भय ने चाह प्रभम मनु में, परंतु साथ साथ मेरा मन भयभीत, भय से व्यथित है। तदेव में दर्शे देव रूपम, इसलिए हे देव मुझे आप उसी रूप को दिखलाइए। प्रसिद्ध देव इस जगत निवास है, तो हे देवताओं के स्वामी जगत के निवास आप प्रसन्न होइए, है ना। तो मुझे आप वही रूप दिखलाइए। कौन सा रूप? चतुर्भुज रूप दिखलाइए, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं शिला प्रभुपाद की। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वे उनके प्रिय मित्र हैं और मित्र रूप में वे अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या बात बता रहे हैं कि पूरी भगवद गीता जो कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं? कृष्ण ने कहा कि मैं तुमको ही सुना रहा हूं, और किसी को नहीं सुना रहा हूं। क्यों? भक्तो असि मे सखा चेति, कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, है ना। तो अर्जुन को भगवान ने इसलिए गीता सुनाई है, मित्र। और मित्र का स्वभाव क्या होता है? मित्र का स्वभाव होता है अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर के प्रसन्न होना, ईर्ष्या नहीं करता, है कि नहीं, है? जो मित्र नहीं है, शत्रु है, तो वो आपके ऐश्वर्य को, धन संपत्ति को देख करके क्या करता है? ईर्ष्या करता है। तो आप उसको थोड़ी बताना चाहोगे, है कि नहीं। लेकिन अपने मित्र को आप बताना चाहोगे कि मेरा इतना बड़ा मकान है, मेरी इतनी बड़ी दुकान है, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, हाँ आप बताते हो। क्यों बताते हो? क्योंकि वो सुन करके प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, है ना। तो अर्जुन कृष्ण की महानता सुनकर के चूंकि प्रसन्न हो रहे हैं, है ना, मित्र हैं, इसलिए कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, है ना। रहस्यम ही एतद उत्तमम, उत्तम रहस्य है। तो कृष्ण अपने रहस्य की बातें, अपनी जो गुप्त बातें हैं, है ना, तो धनी व्यक्ति जो है ना बताता है, मैं करोड़पति हूं, मैं इतना जो है ना करोड़ रुपया मेरा इस बैंक में है, इस बैंक में मेरे इतने करोड़ रुपए हैं, है ना। तो उस व्यक्ति को बताता है जो प्रसन्न हो, है ना। तो अर्जुन प्रसन्न होते हैं, है ना, कि कृष्ण ईश्वर है। और कृष्ण अर्जुन को जो है इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि हमारा मित्र जो है ना कैसा प्रभावशाली है, है कि नहीं। तो अर्जुन प्रसन्न हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि क्योंकि अर्जुन कृष्ण के प्रिय मित्र हैं और मित्र अपने मित्र के ऐश्वर्य को देख करके बहुत पुलकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है। अर्जुन ये देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उनके मित्र कृष्ण क्या है? भगवान है, और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हर्ष इस बात का है, है ना। अब आगे अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मन भय से व्यथित है। तो प्रभुपाद समझाते हैं, किंतु साथ ही वे इस विराट रूप को देखकर भयभीत हैं कि उन्होंने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अर्जुन क्यों डर रहे हैं कि मैंने कृष्ण का बहुत अपराध किया है, इनकी तो हमेशा पूजा होनी चाहिए, हर समय इनको नमस्कार किया जाए, प्रणाम किया जाए, स्तुति की जाए, पूजा की जाए, आरती उतारी जाए, है ना। लेकिन मैंने तो कभी इनकी पूजा नहीं की, मैंने तो इनका कभी भी सम्मान नहीं किया, और इनसे हमेशा बराबर का व्यवहार करता रहा, और इनको जो है कृष्ण बोलता था, सखा बोलता था, और हंसी मजाक करता था, तो मैंने बड़ा अपराध किया। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन के भय का एक दूसरा कारण भी है, क्योंकि भगवान का रूप ही ऐसा भयानक है। वैसे अर्जुन ने तो ये बात कही है कि मैंने बहुत जो है अपराध किया है, लेकिन बाद में 44 विश्व में कहा है कि आप तो मेरे अपराधों को सहन करोगे, क्योंकि एक मित्र का स्वभाव है कि अपने मित्र के अपराधों पर ध्यान नहीं देता है। तो आप मेरे मित्र हो या पिता हो, मेरे मित्र हो, मेरे पिता हो, मेरे स्वामी हो, है ना, तो ये तो आप क्षमा कर दोगे। तो इसलिए अर्जुन का वो डर तो दूर हो गया कि मैंने अपराध किया। अगर पिछले श्लोक को देखा जाए तो उन्होंने जो ना ये कह करके शांति पाली है अर्जुन ने कि आप मेरे अपराधों को क्षमा करोगे। पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा करता ही है ना, और मित्र अपने मित्र के अपराधों को क्षमा करता ही है, तो आप क्षमा करोगे ही मेरे अपराधों को। लेकिन डर फिर भी लग रहा है, क्योंकि कृष्ण का ये जो रूप है तो इस रूप से कोई व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, है ना। तो प्रेम करने के लिए जो है कृष्ण का क्या है, आदि रूप, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। तो आदि पुरुष जो है ना गोविंद है, जिनसे भक्त प्रेम कर सकते हैं, प्रेम का संबंध बना सकते हैं। तो यहां अर्जुन को परेशानी हो रही है कि कैसे प्रेम का संबंध बनाए भगवान के स्वरूप के साथ में, है ना। तो भये न चा प्रभ्यतम मनोमेम, तो प्रभुपाल लिखते हैं इस प्रकार भयवश उनका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा है कि आप मुझको वही रूप दिखलाइए। अब वही रूप का मतलब कृष्ण रूप भी हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं, नारायण रूप कह रहे हैं। इस श्लोक में तो ऐसा कुछ नहीं है कि अर्जुन ने कहा कि अपना नारायण रूप दिखलाइए, तो वो कृष्ण रूप भी तो हो सकता है कि आप मुझे अपना वही रूप दिखलाइए। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन ने नारायण रूप देखना चाहा है, तो ये कैसे, क्योंकि अगले श्लोक में अर्जुन ने फिर कहा कि क्या तेने विरूपेण चतुर्भुजेन, अगले श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि तेने विरूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो विश्वमूर्ते, तो अपना चतुर्भुज रूप में आप जो है ना आप प्रकट होइए। सहस्रबाहो, आप अभी हजार भुजाओं वाले हैं, लेकिन अब आप चतुर्भुज रूप बन जाइए, है ना। तो इसका मतलब यह है कि इस श्लोक में अर्जुन ने जो कहा है वो भगवान के चतुर्भुज रूप को देखने की बात कही है। तो नारायण रूप, तो प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, ये विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। तो प्रभुपाद जी भगवान के इस विराट रूप को महत्व नहीं दे रहे हैं। क्यों महत्व नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस विराट रूप से कोई भक्त जो है ना प्रेम नहीं कर सकता, है कि नहीं, सेवा नहीं कर सकता, केवल क्या कर सकता है, भय कर सकता है, भयभीत हो सकता है बस, और कोई दूसरा संबंध नहीं बन सकता है विराट रूप के साथ में, केवल भय का संबंध बन सकता है, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है, है ना। तो ये बड़े रहस्य की बात है, वैकुंठ जगत में बहुत से वैकुंठ हैं, और प्रत्येक वैकुंठ में भगवान चार भुजाओं के हैं, लेकिन अलग अलग नामों से हैं। किसी में वो नारायण नाम के भगवान है, और कहीं पर माधव, कहीं पर केशव, कहीं पर वामन, ऋषिकेश, पद्मनाभ, इस प्रकार के अलग अलग नामों से भगवान विद्यमान है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहते थे। निस्संदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य चरितामृत में जो भगवान अलग अलग वैकुंठों में निवास करते हैं और चार भुजाओं के हैं, लेकिन अंतर है अगर कुछ तो उनके जो आयुध हैं उनके क्रम में अंतर है। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये चार हाथों में चार चीजें निश्चित हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? हाँ, उल्टा पलटा उल्टा पलटा रहता है। इस प्रकार से भगवान जो है अलग अलग होते हैं और उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से अगर चारों का जो है ना अगर क्रम बदला जाए, अलग अलग क्रम बनाया जाए चार हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म का, तो इस प्रकार से 24 अलग अलग क्रम बनते हैं। तो इसमें वो 24 भगवान के नाम दिए गए हैं चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, तो ये मैं जो है आपको इसको पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें आप ऐसे समझो कि भगवान के जो है चार भुजाएं हैं, तो पहली भुजा जो है ना मानी गई है दाहिनी तरफ की नीची, दाहिनी तरफ जो नीचा हाथ है वो पहला, और फिर दाहिना ऊंचा दूसरा हुआ, फिर बायां ऊंचा तीसरा, फिर बायां नीचा चौथा। इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह के क्रम में जो है अलग अलग आयुध हैं, है ना। तो सबसे पहला जो है क्रम है गदा का, गदा नीचे और शंख ऊपर, फिर चक्र ऊपर और कमल नीचे, इस प्रकार से। तो ये वासुदेव भगवान है, ये वासुदेव भगवान है जिनके गदा, फिर शंख, फिर चक्र और फिर कमल, इस प्रकार से है। फिर शंकरसन भगवान के कैसे हैं? शंकरसन भगवान का गदा, फिर शंख, फिर कमल और फिर चक्र, इस तरह से। वासुदेव गदा शंख चक्र पद्म धरण, शंकरसन गदा शंख पद्म चक्र कर्ण। फिर प्रद्युम्न भगवान, उनका क्या है? चक्र, फिर शंख, फिर गदा, फिर कमल। और अनिरुद्ध भगवान का क्या है? चक्र, गदा, शंख और कमल, इस प्रकार से। प्रद्युम्न चक्र शंख गदा पद्म धरण, अनिरुद्ध चक्र गदा शंख पद्म कर्ण। फिर केशव भगवान, केशव भगवान कैसे हैं? कमल, फिर शंख, फिर चक्र और फिर गदा, ये केशव भगवान है। फिर नारायण भगवान कैसे हैं? शंख, फिर कमल, फिर गदा, फिर चक्र। श्री केशव पद्म शंख चक्र गदा धरण, नारायण शंख पद्म गदा चक्र धरण। फिर माधव भगवान कैसे हैं? गदा, फिर चक्र, फिर शंख, फिर कमल। और गोविंद भगवान कैसे हैं? चक्र, फिर गदा, फिर पद्म और फिर शंख। श्री माधव गदा चक्र शंख पद्म कर्ण, श्री गोविंद चक्र गदा पद्म शंख धर। फिर भगवान विष्णु कैसे हैं? गदा, फिर पद्म, फिर शंख, फिर चक्र। और मधुसूदन भगवान कैसे हैं? चक्र, फिर शंख, फिर कमल, फिर गदा। विष्णु मूर्ति गदा पद्म शंख चक्र कर, मधुसूदन चक्र शंख पद्म गदा धर। फिर त्रिविक्रम भगवान कैसे हैं? कमल, फिर गदा, फिर चक्र, फिर शंख। और वामन भगवान कैसे हैं? शंख, चक्र, गदा और कमल। त्रिविक्रमे पद्म गदा चक्र शंख कर्ण, श्री वामन शंख चक्र गदा पद्म धर। फिर श्रीधर भगवान कैसे हैं? कमल, फिर चक्र, फिर गदा और फिर शंख। और हृषिकेश भगवान कैसे हैं? गदा, चक्र, कमल और शंख। श्रीधर पद्म चक्र गदा शंख कर्ण, हृषिकेश गदा चक्र पद्म शंख धर। फिर पद्मनाभ भगवान कैसे हैं? शंख, कमल, चक्र और गदा। और दामोदर भगवान कैसे हैं? कमल, चक्र, गदा और शंख। पद्मनाभ शंख पद्म चक्र गदा कर, दामोदर दामोदर पद्म चक्र गदा शंख धर। पुरुषोत्तम भगवान कैसे हैं? चक्र, कमल, शंख और गदा। अच्युत भगवान कैसे हैं? गदा, कमल, चक्र और शंख। पुरुषोत्तम चक्र पद्म शंख गदा धर, श्री अच्युत गदा पद्म चक्र शंख धर। नरसिंह भगवान कैसे हैं? चक्र और पद्म और गदा और शंख। जनार्दन भगवान कैसे हैं? कमल, चक्र, शंख और गदा। अगर तीन बताऊं तो चौथा तो आपको बताना चाहिए ना। श्री नृसिंह चक्र पद्म गदा शंख धर, जनार्दन पद्म चक्र शंख गदा कर। अब हरि भगवान कैसे हैं? शंख, चक्र, पद्म और गदा। और श्री कृष्ण भगवान कैसे हैं? ये कृष्ण, ये मुरलीधारी कृष्ण नहीं है, ये विष्णु है, एक विष्णु है जिनका नाम कृष्ण है। तो ये श्री कृष्ण अपने हाथों में कैसे धारण करते हैं? शंख, गदा, कमल और चक्र। श्री हरि शंख चक्र पद्म गदा कर, श्री कृष्ण शंख गदा पद्म चक्र कर। अधोक्षज भगवान कैसे हैं? कमल, गदा, शंख और चक्र। और उपेंद्र भगवान कैसे हैं? शंख, गदा, चक्र और पद्म या कमल, ठीक है। अधोक्षज पद्म गदा शंख चक्र कर, उपेंद्र शंख गदा चक्र पद्म कर, उपेंद्र संघ गदा चक्र पद्म कर। तो इस प्रकार से ये हमने आपको 24 भगवान के नाम बतलाए और उनका आयुधों का क्रम बतलाया कि किस प्रकार के क्रम है भगवान के आयुध के। तो यहाँ इस श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपना वही चतुर्भुज रूप दिखलाइए। अब अर्जुन कह रहे हैं कि आप वही चतुर्भुज रूप दिखलाइए, तो वही का मतलब वो इशारा कर रहे हैं पहले से कि पहले जैसा, तो पहले कभी देखा होगा अर्जुन ने कृष्ण का, पहले कभी देखा होगा, तभी तो कह रहे हैं कि आप वही मुझे दिखलाइए। हमेशा तो कृष्ण चतुर्भुज रूप में नहीं रहते, हमेशा तो द्विभुज रूप में रहते हैं। कृष्ण के मित्र हैं, अर्जुन के मित्र हैं, तो अर्जुन के जो सखा हैं और पार्थ सारथी हैं तो वे तो दो भुजाओं के हैं, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझे वही चतुर्भुज रूप दिखलाइए। तो इसका क्या मतलब है, किस समय की बात कर रहे हैं अर्जुन कि मुझे आप वही चतुर्भुज रूप दिखलाइए? इस वर्णन से ऐसा पता चलता है कि जब अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की थी कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए, तो भगवान जो है जब अपना विश्व रूप दिखलाते हैं, हालांकि पहले इतना वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान ने पहले अपना चार भुजाएं प्रकट की और फिर उन्होंने भुजाएं अपनी बढ़ाते गए, है ना। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है पश्चिम पार्थ रूपाणी शतशोदय सहस्त्र सहा, कि मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देखो, है ना। तो इस तरह से भगवान ने जो है ना अपनी भुजाएं भी ज्यादा बढ़ाने शुरू की और फिर अपने रूप भी बढ़ाने शुरू किए। तो अर्जुन को भी भगवान ने पहले अपने सैकड़ों रूप दिखलाए और फिर सैकड़ों से हजारों रूप कर दिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं एकदम से, मतलब वो उन्होंने मतलब अपना विस्तार नहीं किया है, बल्कि धीरे धीरे, है ना, और पहले अपने सैकड़ों रूप दिखलाए और सैकड़ों से फिर हजारों हो गए, हजारों से फिर लाखों, लाखों से फिर करोड़ों, इस तरह से फिर अनंत रूप। आखिर जो है ना फिर अर्जुन को कहना पड़ा अनंत रूप, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, कि अब तो जो है ना मैं आपका ना तो अंत देखता हूं ना आदि देखता हूं, अश्याम विश्वेश्वर विश्व रूप है, अनंत रूप भी अर्जुन ने कहा है भगवान को, है ना। अनंत रूप तो भगवान बाद में हुए, पहले सैकड़ों रूप हुए, फिर हजारों रूप हुए, फिर लाखों, फिर करोड़ों, फिर अरबों, इस तरह से वो बढ़ाते गए। उसी प्रकार से अपनी भुजाएं भी अनंत बाहु, सहस्त्र बाहु, है ना, चतुर्बाहु। तो भगवान ने जो है ना पहले चतुर्भुज रूप दिख रहा है, फिर सहस्त्र भुज, है ना, हजारों, फिर लाखों, फिर करोड़ों, इस प्रकार से भुजाएं भी बढ़ाते गए भगवान। तो अर्जुन जो कह रहे हैं तदेव में दर्श है देव रूपम, कि हे देव आप मुझको आप वही रूप दिखलाइए, इसका मतलब यह है कि वो चतुर्भुज रूप दिखलाइए जो आपने इस विश्व रूप को दिखाने के पहले प्रकट किया था। तो कृष्ण अपना जो विश्व रूप दिखलाते हैं उसका क्रम यही है कि पहले वे चतुर्भुज रूप बनते हैं, दो भुजाओं से चार भुजाएं होती हैं उनकी, और फिर चार भुजाओं से फिर वो अपना बढ़ते जाते हैं। तो इसी प्रकार से अब भगवान जो है जब आएंगे मनुष्य रूप में, कृष्ण रूप में आएंगे, तो पहले चतुर्भुज रूप होंगे और चतुर्भुज रूप से फिर वो क्या होंगे, हाँ, द्विभुज रूप होंगे, है ना। तो अर्जुन जो कह रहे हैं तदेव में दर्श है देव रूपम, कि आप मुझे वही रूप दिखलाइए, और फिर क्या कहते हैं अर्जुन अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, प्रसीद देवेश जगन निवास है, प्रसन्न होइए हे देवताओं के स्वामी, आप प्रसन्न होइए, हे जगत निवास आप प्रसन्न होइए। तो जगन निवास आप प्रसन्न होइए, इसका मतलब क्या है, अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे तो जगत प्रसन्न होगा, हाँ, इसका यही मतलब है। यस्मिन प्रसन्ने, हाँ, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो भवति, इस प्रकार का है ना। तो शास्त्र का ये कहना है कि अगर इनको प्रसन्न किया जाए तो सब प्रसन्न होंगे, अगर इनको प्रसन्न ना किया जाए तो कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है, है ना। आप प्रसन्न करते रहो, है ना, लेकिन कोई प्रसन्न नहीं होता है, सब नाराज होते हैं, है कि नहीं। तो ये रहस्य है भगवत गीता में, ये रहस्य जो है जगह जगह प्राप्त होता है, कृष्ण को प्रसन्न करो, कृष्ण को प्रसन्न करो तो सब प्रसन्न है, सब दिशाएं प्रसन्न है। और अगर कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया तो फिर कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है, आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, ना अपने को प्रसन्न कर सकते हैं ना किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, है? तो प्रसिद्ध देवेश जगन निवास है, यही जो है जीवन की सफलता है, अगर कृष्ण को प्रसन्न कर लिया जाए। इसलिए किसी भक्त ने भजन गाया है, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, जो मुझे है काम ईश्वर से, मुझे जो ना ईश्वर को प्रसन्न करना है, अगर जगत रूठे तो रूठने दो, है ना। कहां तक रूठेगा जगत, आखिर प्रसन्न होना ही पड़ेगा। तो ये है असली लेकिन आजकल जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, समाज सेवा, देश सेवा, मानव सेवा, है ना, ये सब जो है ना असफल होती हैं, असफल होती हैं, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते, इसलिए सब असफल होती हैं, है ना। और कृष्ण की सेवा से मानव सेवा, देश सेवा, समाज सेवा सब होती है, ये रहस्य नहीं जान पाते हैं, ये रहस्य नहीं जान पाते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ है वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो जड़ के प्रसन्न होने से ही ये पूरा वृक्ष प्रसन्न हो रहा है ना। तो ये जो है ना बड़ी व्यवहारिक बात है, लेकिन जो व्यक्ति अनुभवी नहीं है तो वो समझ नहीं सकता इस बात को। जैसे मैं भी, मुझे भी याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो घर में तुलसी का पौधा सूख गया, तो मेरे पिताजी बोले कि देखो तुलसी का पौधा सूख गया, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल सूख गया, और सूख गया तो सूख गया, अब थोड़ी हरा भरा हो सकता है, हैं? जो पौधा सूख गया तो सूख गया, अब हरा भरा थोड़ी हो सकता है। तो मेरे पिताजी बोले कि अभी एक लोटा पानी लाओ और मिट्टी में डालो, तुलसी की मिट्टी में डालो। तो मैंने कहा